आगे सबक देखिए भाई, वन नफकतु लिकुल्ली दी रहिमिन महरमिन इदा कान सगीरन फकीरन औ कानत इमरअतन बालिगतन फकीरतन औ कान ज़करन बालिगन फकीरन ज़मीनन औ अअमा लिअन्न अस्सिलत फिल क़राबति अल-क़रीबति वाजिबतुन दून अल-बईदा वल-फासिलु अन यकूना दा रहिमिन महरमिन وقد قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك। भाई गुज़श्ता सबक में साहिबे हिदाया ने आपको बतलाया था कि किसी आदमी पर उसके माँ बाप और उसके तमाम अजदाद और तमाम जद्दाद का नफका वाजिब होगा जब वो फकीर हों, अगरचे उनका दीन इस आदमी से मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। भाई तो साहिब हिदाया ने दलील जिक्र फरमाई थी कि मां बाप चाहे काफिर ही क्यों ना हो, फिर भी नफका जो है उस मुसलमान शख्स पर आएगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वसाहिबहु मा फी दुनिया मारूफा, के वालिदैन के साथ रहो दुनिया में मारूफा, अच्छे तरीके के साथ। तो अल्लाह ने वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से रहने का हुक्म दिया है, और कोई शख्स खुद तो अल्लाह की नियामतों के अंदर जिंदगी गुजार रहा हो और वालिदैन को भूख से मरने के लिए छोड़ दे तो ये तो अच्छे तरीके में से नहीं है, जबकि अल्लाह ने तो वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से रहने का हुक्म दिया है। मैंने आपको बतलाया कि ये आयत जो है हजरत साद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिदैन के बारे में नाजिल हुई। हजरत साद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान ले आए और ये वालिदा के सबसे महबूब बेटे थे, तो लिहाजा इनकी वालिदा को जब पता चला कि मेरा बेटा जो है वो मुसलमान हो गया है, तो उन्होंने साद से कहा कि अब मैं न किसी साये में बैठूंगी और ना ही मैं खाऊंगी पीऊंगी जब तक तुम इस दीन को छोड़ नहीं देते। चुनांचे तीन दिन गुजर गए भाई इसी तरह, ना तो किसी साये में बैठ रही हैं और ना कुछ खा रही हैं ना पी रही हैं, यहां तक कि उन पर बेहोशी तारी होने लगी। भाई साद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने तीन दिन तक तो सबर किया, लेकिन जब वालिदा की यह हालत देखी तो हुजूर अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और ये शिकायत पेश फरमाई, तो उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वह इन जाहदा का आला अंतुश्री का भी, और अगर तुम्हारे वालिदैन तुम पर जोर डालें कि तुम मेरे साथ शरीक बनाओ, मा लैसा लका बिही इल्मुन, उस चीज को जिसकी तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, फला तुतिउहुमा, तो उनकी फरमाबरदारी मत करना, वह साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, और उनके साथ दुनिया में अच्छे तरीके से रहो। भाई तो मालूम हुआ वालिदैन जब गुनाह का या शिर्क वगैरह का हुक्म दें तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन उनको रद्द भी किया जाए तो भी अच्छे तरीके से रद्द किया जाए जिससे उनको तकलीफ न हो। गई और नी साहिब हिदाया ने फिर बतलाया कि यह तो मां बाप का हुक्म था, और इसी तरह अजदाद और जद्दाद भी हैं भाई, क्योंकि ये अजदाद भी आबा में से हैं, ये भी आबा में से हैं, ये भी इंसान के अब हैं, अलबत्ता दरमियान में वास्ता आ जाता है, और इसी तरह जद्दाद जो हैं वो इंसान की उम्महात में से हैं भाई, अलबत्ता दरमियान में वास्ता आ जाता है। तो लिहाजा ये मां बाप के कायम मकाम हैं, और मां बाप का नफका इंसान पर हर हाल में आता है, तो अगर ये अजदाद और जद्दाद भी फुकारा हो तो इनका नफका भी इंसान पर आएगा चाहे दीन मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। और नींद इसलिए क्योंकि ये सबब बने हैं इस शख्स को जिंदगी देने का, लिहाजा ये भी मुस्तहिक हैं कि इनको भी जिंदगी दी जाए, यानी इनके नफके का इंतजाम किया जाए जब इनके पास नफका न हो। भाई अलबत्ता ये शर्त है कि इनका नफका उस वक्त इंसान पर वाजिब होगा जब ये फकीर हों, इसलिए क्योंकि अगर ये मालदार हैं तो फिर तो इंसान का नफका अपने ही माल में वाजिब होता है, किसी और के माल में उसको वाजिब नहीं किया जा सकता। और फिर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि इख्तिलाफ दीन की सूरत में सिर्फ बीवी और उसूल और फुरू इनका नफका इंसान पर आता है। भाई बीवी का तो नफका इसलिए आएगा क्योंकि उसके साथ आकदे निकाह किया है, इंसान ने खुद अपने ऊपर उसके नफके को लाजिम किया है, तो वहां जब इख्तिबास मौजूद है तो वहां उसका नफका भी देना पड़ेगा, जबकि बाकी जो हैं उसूल और फुरो वहां पर जुजियत वाला ताल्लुक है कि ये सब एक दूसरे का जुज है। भाई बेटा बाप का जुज है तो बाप बेटे का जुज है, भाई दोनों एक दूसरे के जुज है ना, बेटा किसका जुज, बाप का, तो जाहिर सी बात है बाप किसका जुज, बेटे का जुज है, तो इनमें जुजियत वाला ताल्लुक है। और इंसान का जुज उसकी अपनी जात के दर्जे में होता है, और जैसे इंसान की अपनी जात का खर्चा उसकी अपने ऊपर ही आता है, कुफर से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी तरह अपने जुज का नफका भी उसी इंसान पर आएगा, इस कुफर की वजह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अलबत्ता ये उस वक्त है कि जब ये उसूल और फुरू जिम्मी हो भाई, अगर ये हरबी हैं, दारुल हर्ब में रहते हैं, तो फिर इनका नफका उस शख्स पर वाजिब नहीं होगा भाई। इसलिए क्योंकि जो लोग हमसे दीन के मामले में लड़ाई करते हैं उनके साथ अल्लाह ने नेकी करने से मना फरमाया है। और इसी तरह दो भाई हैं, एक मुसलमान है और एक गैर मुस्लिम है, तो इस सूरत में एक का नफका दूसरे पर वाजिब नहीं होगा, इसलिए क्योंकि नफके का ताल्लुक वरासत से है भाई। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वालल वारिसि मिस्लु ज़ालिक, कि वारिस पर भी इसी के मिसल जिम्मेदारी है, यानी अगर बच्चे के बाप जिंदा नहीं है तो उसके वारिस पर उसका नफका आएगा भाई। जबकि एक भाई मुसलमान है और एक गैर मुस्लिम है, तो फिर ये तो एक दूसरे के वारिस नहीं बनते, जब ये एक दूसरे के वारिस नहीं बनते तो लिहाजा इनका एक दूसरे पर नफका भी वाजिब नहीं होगा भाई। जबकि इसके मुकाबले में आजादी, आजादी जो है मसलन कोई अपने करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बनता है, तो मालिक बनते ही अगले लम्हे के अंदर ही वो आजाद हो जाता है, चाहे उस करीबी महरम रिश्तेदार का दीन अलग ही क्यों ना हो। तो सवाल पैदा होता है कि नफके के अंदर तो आपने शर्त लगाई कि दोनों का दीन एक होना चाहिए, लेकिन करीबी महरम रिश्तेदार की आजादी के मामले के अंदर आपने दीन के एक होने की शर्त नहीं लगाई, तो इस फर्क की वजह क्या है? तो साहिब हिदाया ने बतलाया था कि भाई ये जो नफके का ताल्लुक वरासत से है वो खुद कुरान से साबित है, वालल वारिसि मिस्लु ज़ालिक, और जबकि करीबी महरम रिश्तेदार का आजाद होना ये हदीस से साबित है। हदीस में आया है मन मलकज़ा रहम महरम मिनहु अतका अलैही, जो अपने करीबी महरम रिश्तेदार का मालिक बना वो उस पर आजाद हो जाएगा। तो यहां पर हदीस के अंदर देखो दीन के मुख्तलिफ होने को जिक्र नहीं किया गया, जबकि नफके का ताल्लुक वरासत से है, और वरासत के अंदर तो जब दीन मुख्तलिफ हो तो एक दूसरे के वारिस नहीं बनते तो नफका भी नहीं आएगा। और फिर अकली दलील भी जिक्र फरमाई थी साहिब हिदाया ने भाई, वो फरमाते हैं कि जो करीबी रिश्तेदारी है ये एहसान को वाजिब करती है, और दीन एक हो तो इस सूरत में इसमें और ज्यादा ताकीद आ जाती है, यानी ये इल्लत मुअक्कदा बन गई भाई। करीबी रिश्तेदारी ये इल्लत है एहसान की, और अगर दीन भी एक हो तो इसके अंदर ताकीद आ गई, और ज्यादा जोर आ गया कि इस रिश्तेदार से अच्छा सलूक करो, तो लिहाजा जब दीन भी एक हो तो अब ये इल्लत मुअक्कदा बन गई। तो एक है नफ्स इल्लत यानी करीबी रिश्तेदारी, और एक है इल्लत मुअक्कदा के करीबी रिश्तेदारी के साथ दीन भी एक हो। और दूसरी तरफ देखें तो वहां पर करीबी रिश्तेदार का कोई मालिक बने तो ये दवा में मिल्कियत जो है ये कतअ रहमी का सबब है, अगर इस मिल्कियत को दायम करार दिया जाए कि करीबी महरम रिश्तेदार आजाद नहीं होगा बल्कि ये इसी का ममलूक रहेगा, फिर तो इसके अंदर कतअ रहमी है भाई, रिश्ते को तोड़ना है भाई, और इस्लाम ने तो रिश्ते को तोड़ने से मना किया है। तो देखो दवा में मिल्क जो है इसकी वजह से भी कतअ रहमी आती है, और हिरमान नफका की वजह से भी कतअ रहमी आती है, लेकिन दवा में मिल्कियत वो कतअ रहमी में बढ़कर है, वो आला है, और हिरमान नफका वो कतअ रहमी के अंदर अदना है भाई। तो लिहाजा जो आला है उसको दूर करना जरूरी है, तो वो नफ्स इल्लत के जरिए ही दूर हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। लिहाजा करीबी महरम रिश्तेदार है तो जैसे ही मालिक बनेगा तो इल्लत यानी करीबी रिश्तेदारी पाई गई, यानी करीबी रिश्तेदार भी है और महरम भी है, तो वो फौरन आजाद हो जाएगा। जबकि हिरमान नफका वो कतअ रहमी के अंदर अदना है, तो सिर्फ इल्लत काफी नहीं उसको दूर करने के लिए, बल्कि इल्लत मुअक्कदा चाहिए भाई, ऐसी इल्लत चाहिए जिसमें ताकीद हो, जोर हो, कुव्वत हो, तो उसके लिए इल्लत मुअक्कदा जो है वो उसको दूर कर देगी भाई। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा दोनों में फर्क आ गया, नफके और आजादी में फर्क आ गया कि नफके के अंदर इल्लत मुअक्कदा होना जरूरी है, फिर ही नफका वाजिब होगा, और आजादी जो है उसके अंदर नफ्स इल्लत भी काफी है, नफ्स इल्लत यानी करीबी रिश्तेदारी मौजूद है तो आजादी साबित हो जाएगी भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने बतलाया कि वालिदैन के नफके में औलाद के साथ कोई और रिश्तेदार शरीक नहीं होगा। एक शख्स जो है उसके वालिदैन फकीर हैं, मोहताज हैं और ये मालदार है तो ये फकीर मां बाप का नफका इसी औलाद पर ही आएगा, किसी और रिश्तेदार पर नहीं आएगा भाई। वजह इसकी ये क्योंकि ये जो मां बाप हैं इनके लिए तावील की गई है इंसान के माल में हदीस के जरिए। मैंने आपको बतलाया था कि फुकहा फरमाते हैं कि बाप का माल अलग होता है और औलाद का माल अलग होता है, लेकिन हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया अंत व मालुक अली अबी का, कि तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप के हैं। तो हकीकत के अंदर तो माल अलग है लेकिन हुजूर अलैहि सलाम ने औलाद के माल को भी बाप का माल करार दिया। तो जब औलाद का माल मौजूद है तो इसका मतलब है बाप मालदार है, क्योंकि औलाद का माल उसी का माल है। तो जब औलाद का माल मौजूद है तो बाप मालदार हुआ, जब बाप मालदार है तो वो अपने इसी माल में से खाएगा, किसी और रिश्तेदार पर उसका नफका नहीं आएगा। इसीलिए कहा कि औलाद पर उसका नफका आएगा क्योंकि ये उसके माल के दर्जे में है भाई। तो सवाल पैदा होता है कि हदीस के अंदर बेटे के माल को बाप का माल करार दिया गया तो इसका तो तकाजा यह है कि बाप को बेटे के सारे माल का मालिक होना चाहिए, बेटे के सारे माल का मालिक होना चाहिए। तो उसका जवाब देते हैं कि भाई और अहादीस से मालूम होता है कि बाप हाजत और जरूरत के वक्त माल का मालिक बनता है, वैसे मालिक नहीं बनता। चुनांचे हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है, वो फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन औलादकुम हिबतुन लकुम, कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए अल्लाह की अता है, अल्लाह का तोहफा है। यह बुलिमई यशा उनासम व यह बुलिमई यशा उजुकूरा, अल्लाह जिसको चाहते हैं मुन्नस औलाद नसीब फरमाते हैं और जिसको चाहते हैं मुजक्कर औलाद नसीब फरमाते हैं। वह अमवाल हम लकुम, और ये जो औलाद के माल हैं ये भी तुम्हारे लिए हैं। इज़ाहताज तुम इलैहा, जब तुम उसके मोहताज हो जाओ, जब तुम मोहताज हो, जब तुम्हें हाजत हो तो फिर ये औलाद का माल भी तुम्हारा माल है। मालूम हुआ बाप का माल अलग है, हां एहतियाज के वक्त वो औलाद के माल का मालिक बन जाता है भाई। नीज इसी तरह कुरान के अंदर मैयत का वारिस अगर बेटा और बाप हो तो बेटे की मौजूदगी में मैयत के बाप को छठा हिस्सा मिलता है, सुदुस मिलता है। तो अगर बाप बेटे के माल का मालिक था फिर तो उस मैयत के सारे माल का मालिक उसी बाप को होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने बाप को सारे माल का मालिक करार नहीं दिया, बाप के लिए सिर्फ छठा हिस्सा है और बाकी माल उस मैयत के बेटे का होगा। मालूम हुआ हकीकत के अंदर बाप बेटे के माल का मालिक नहीं है, सिर्फ जरूरत और हाजत के वक्त वो मालिक बनता है। और नीज दूसरी दलील साहिब हिदाया ने यह जिक्र फरमाई कि यह जो औलाद है यह मां बाप का जुज है, लोगों में यह सबसे ज्यादा करीब हैं अपने मां बाप के। जब यह सबसे ज्यादा करीब हैं तो मां बाप का नफका भी इन्हीं पर वाजिब होना चाहिए, किसी और पर नहीं। और मां बाप के नफके में मुजक्कर और मुअन्नस औलाद बराबर हैं जाहिर रिवायत के मुताबिक, यानी मां बाप फकीर और मोहताज हैं और उनका एक बेटा और बेटी है और दोनों मालदार हैं, तो इस सूरत में निसफ नफका बेटे पर आएगा और निसफ नफका बेटी पर आएगा। जबकि इमाम सरखसी रहमहुल्ला से एक रिवायत है जो वो इमाम साहब से नकल फरमाते हैं कि वालिदैन का नफका औलाद पर मीरास के बकदर आएगा, और एक शख्स का इंतकाल हो और उसका बेटा भी हो और बेटी भी मौजूद हो तो बेटे को बेटी के मुकाबले में दुगना हिस्सा मिलता है। लिज़ाकर मिस्लु हज़िल उनसयैनी, बेटे को बेटी से दुगना हिस्सा मिलता है, तो लिहाजा नफके के अंदर भी बेटे पर बेटी के मुकाबले में दुगना खर्चा आएगा। लिहाजा अगर 1000 रुपया दोनों के एक दिन का खर्चा है तो उस 1000 के 3 हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्सा बेटी पर आएगा और 2 हिस्से बेटे पर आएंगे। ये इमाम सरखसी रहमतुल्लाह की रिवायत के अंदर है जो उन्होंने इमाम साहिब से नकल फरमाई है भाई। लेकिन साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि सही कौल वही है जो जाहिर रिवायत के अंदर आ गया कि बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं भाई, बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। इसलिए क्योंकि यह इल्लत दोनों को शामिल है, ये जो हदीस में तावील की गई और ये जो लोगों में सबसे ज्यादा करीब हैं तो इसके अंदर बेटा और बेटी दोनों शामिल हैं। तो यूं कहो कि जो साहिब हिदाया ने इल्लत बयान फरमाई वो इल्लत दोनों को शामिल है, बेटे को भी और बेटी को भी, लिहाजा दोनों पर नफका बराबरी के साथ आएगा। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वन नफकतु लिकुल्ली ذی رحم محرم اذا كان صغيرا فقيرا او كانت امراه بالغه فقيره او كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا او اعمى। भाई अब और रिश्तेदार जो हैं उनका नफका किस सूरत में इंसान पर आएगा और किस सूरत में नहीं आएगा, अब उसको साहिब हिदाया बयान फरमा रहे हैं। याद रखो, कोई भी रिश्तेदार है और वो तंगदस्त है तो आप फौरन ये हुक्म न लगा देना कि इसका नफका इस मालदार आदमी पर आएगा, इसलिए क्योंकि अगर एक शख्स बालिग है और वो काम काज कर सकता है, अपनी कमाई कर सकता है, तो फिर इस सूरत में चाहे वो तंगदस्त ही क्यों ना हो उसका नफका किसी पर वाजिब नहीं किया जाएगा, उसको खुद कमाकर अपने नफके का इंतजाम करना पड़ेगा। तो लिहाजा किन किन सूरतों में अपने करीबी महरम रिश्तेदार का नफका किसी पर आएगा, अब साहिब हिदाया वो बयान फरमाएंगे। तो उसमें याद रखना, सबसे पहले तो दो चीजों का होना जरूरी है कि वो रिश्तेदार भी हो और महरम भी हो, कि वो रिश्तेदार भी हो और महरम भी हो, ये दो शर्तें तो होना जरूरी हैं। और उसके बाद फिर तीसरी शर्त कि उनका फकीर और तंगदस्त होना भी जरूरी है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर वो रिश्ते वो जो करीबी महरम रिश्तेदार है जो फकीर है वो या बालिग होगा या नाबालिग होगा। अगर वो नाबालिग है तो उसका खर्चा इसके करीबी महरम रिश्तेदार पर आएगा, अगर वो नाबालिग है, क्योंकि जब वो नाबालिग है तो वो मोहताज है, वो उसके पास माल भी नहीं है, तो उसका खर्चा इंसान को देना पड़ेगा। और अगर वो करीबी महरम रिश्तेदार जो फकीर है वो अगर मुअन्नस है तो फिर इस सूरत में भी उसका नफका इंसान पर वाजिब होगा, चाहे वो बालिगा ही क्यों ना हो, इसलिए क्योंकि जब वो औरत है तो वो मोहताज है, जब मोहताज है तो इस हाजत की वजह से अब उसका नफका इस इंसान पर वाजिब होगा। और अगर वो जो रिश्तेदार करीबी महरम रिश्तेदार है जो फकीर है, अगर वो मर्द है तो उस सूरत में मैंने बतला दिया कि फिर इस सूरत में अगर वो कमाने के काबिल है तो उसका खर्चा किसी पर नहीं आएगा, वो उसको खुद मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन अगर वो अपाहज है या अंधा है, वो बालिग मर्द जो है वो अपाहज है या अंधा है, तो फिर उसका खर्चा इस करीबी महरम रिश्तेदार पर आ जाएगा। मालूम हुआ ऐसा करीबी महरम रिश्तेदार जो फकीर है उसका खर्चा इंसान पर आएगा, लेकिन या तो वो करीबी महरम रिश्तेदार वो सगीर होना चाहिए, ना बालिग हो, अगर बालिग है तो वो औरत हो, वो औरत हो, मुअन्नस हो, और अगर वो बालिग मर्द है तो फिर इस सूरत में नफक आएगा जब वो अपाहज हो या अंधा हो, क्योंकि जब वो अपाहज है या वो अंधा है तो वो मोहताज हुआ भाई, लिहाजा उसका नफका भी इंसान पर आ जाएगा। तो कहते हैं वन नफकतु लिकुल्ली दी रहमी महरमिन, और नफका वाजिब होगा हर करीबी महरम रिश्तेदार के लिए, इदाकान सगीरन फकीरन, जब वो ऐसा नाबालिग हो जो फकीर हो, औकानत इमरातन बालिगतन फकीरतन, या ऐसी औरत है जो बालिगा है फकीरा है, औकान ज़करन, या वो ऐसा मर्द है बालिगन फकीरन जो बालिग है फकीर है, ज़मीनन औ आमा, जमीन कहते हैं अपाहज को भाई, आमा कहते हैं अंधे को, तो कहते हैं औकान ज़करन बालिगन फकीरन ज़मीनन औ आमा, या ऐसा मर्द हो जो बालिग हो फकीर हो और अपाहज हो या अंधा हो, لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة। भाई मतन के अंदर पहली कैद आई थी कि वो करीबी महरम रिश्तेदार हो, करीबी महरम रिश्तेदार हो। याद रखो, करीबी रिश्तेदार का नफका इंसान पर वाजिब होता है, दूर के रिश्तेदार का नफका वाजिब नहीं होता। अब करीबी रिश्तेदार कौन सा है और दूर वाला रिश्तेदार कौन सा है, इसका पता कैसे चलेगा? तो साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि इसका पता महरमियत से चलेगा। अगर वो रिश्तेदार महरम भी है आपका, यानी उसके साथ निकाह जायज नहीं होता किसी सूरत में भी, तो इस सूरत में मालूम हो वो आपका करीबी रिश्तेदार है, और अगर रिश्तेदार तो है लेकिन महरम नहीं, मालूम हो वो करीबी रिश्तेदार नहीं है भाई। तो कहते हैं لِأَنَّ الصِّلَةَ فِي الْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَاجِبَةٌ دُونَ الْبَعِيدَةِ, और इसलिए क्योंकि एहसान जो है वो करीबी रिश्तेदारी में वाजिब है, दून अलबईदती ना के दूर की रिश्तेदारी में, وَالْفَاصِلُ أَنْ يَكُونَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ, والفاصل और वो चीज जो फर्क करने वाली है करीब की और दूर की रिश्तेदारी में जो चीज फर्क करने वाली है, तो कहते हैं वल फासिलु अन यकूना ज़ा रहमी महरमीन, और वो चीज जो करीबी और दूर की रिश्तेदारी में फर्क करने वाली है, अन यकूना ज़ा रहमी महरमीन, वो ऐसा करीबी रिश्तेदार हो जो महरम हो, तो करीबी रिश्तेदार भी हो और महरम भी हो, मालूम हो ये करीबी रिश्तेदार है। وقد قال الله تعالى, और तहकीक अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, وعلى الوارث مثل ذلك, और वारिस पर भी इसी के मिसल जिम्मेदारी है, यानी अगर नाबालिग औलाद के बाप का इंतकाल हो चुका है तो उसके जो रिश्तेदार हैं उन पर उसी की बाप की तरह जिम्मेदारी है, वो इस बच्चे के नफके का इंतजाम करेंगे भाई। तो कहते हैं वालल वारिस मिसलु ज़ालिका, और वारिस पर भी उसी के मिसल जिम्मेदारी है, वफी क़िरात अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़िरात में है, वालल वारिस ज़िर्रहमिल महरमी मिसलु ज़ालिक, भाई ये कुरान के अंदर तो है वालल वारिस मिसलु ज़ालिक, जबकि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की किरात के अंदर वारिस के बाद ज़िर रहमिल महरम का लफ्ज भी मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की किरात में वारिस के लफ्ज के बाद ज़िर रहमिल महरम का लफ्ज भी मौजूद है, मालूम हुआ वारिस से कौन सा वारिस मुराद है, जो करीबी महरम रिश्तेदार है। तो कहते हैं वफी क़िरात अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु, और अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़िरात में है, वअलल वारिसी ज़िर्रहमिल महरमी, और ऐसा वारिस जो करीबी महरम रिश्तेदार है, मिसलु ज़ालिक, उस पर भी इसी के मिसल जिम्मेदारी है। तो यह हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़िरात है, और इसके अंदर वारिस के साथ करीबी महरम रिश्तेदार होने की कैद भी मौजूद है भाई। तो ये किरात मशहूर है और ये बयान बन सकती है कुरान के लिए, तो लिहाजा कुरान के अंदर तो मुतलक वारिस का जिक्र आया, लेकिन ये जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की किरात है ये खबर मशहूर के दर्जे में है, और खबर मशहूर के जरिए किताबुल्लाह पर ज्यादती जायज है, तो ये किरात बयान बन जाएगी उस आयत के लिए भाई। और आयत के अंदर भी जो वारिस आया उस वारिस से क्या मुराद लेंगे, वो वारिस जो करीबी महरम रिश्तेदार हो। आगे देखिए सुम्मा लाबुद्द मिनल हाजती, फिर हाजत का होना जरूरी है भाई, एक आदमी पर आप दूसरे का नफका वाजिब कर रहे हैं तो इस आदमी का मोहताज होना जरूरी है, इसकी हाजत का होना जरूरी है, फिर ही आप इसका नफका दूसरे पर वाजिब कर सकते हैं। और हाजत का पता किससे चलेगा, कहते हैं नाबालिग कोई हो तो नाबालिग होने से भी उसके मोहताज होने का पता चल गया, अगर मुअन्नस है तो मुअन्नस होने से भी उसके मोहताज होने का पता चल गया, इसी तरह अगर कोई अपाहज है या अंधा है तो इसकी वजह से भी उसके मोहताज होने का पता चल गया, लिहाजा इन सूरतों में नफका वाजिब होगा। जब वो करीबी महरम रिश्तेदार वो नाबालिग हो या मुअन्नस हो या अपाहज या अंधा हो तो फिर नफका वाजिब होगा। तो कहते हैं सुम्मा लाबुद्द मिनल हाजती, और फिर हाजत का होना भी जरूरी है यानी नफके के वाजिब करने में, वस्सिगरु वल उनूसतु वज़मानतु वल अमारतुल हाजती, वस्सिगरु और नाबालिग होना, वल उनूसतु और मुअन्नस होना यानी औरत होना, वज़मानतु जमानत ये वही वही ऊपर मतन में आया था, औ काना जकरन बालिगन फकीरन जमीनन, जमीन किसे कहते हैं, अपाहज को, तो जमानत ये कहते हैं अपाहज होना, ये मस्तर है। तो कहते हैं वह जमानतु, और इसी तरह अपाहज होना, वल अमा और अंधा होना, अमारतुल हाजती, ये मोहताज होने की अलामत हैं, लितहक्कुकिल अजजी, आजजी के पाए जाने की वजह से, कि जब ये चीजें पाई जाएंगी तो ये लोग अपने नफके से आजिज होंगे, नाबालिग है वो भी अपने नफके से आजिज है, और इसी तरह मुअन्नस है औरत है तो वो भी अपने नफके से आजिज है, और इसी तरह अपाहज है या अंधा है वो भी अपने नफके से आजिज है, तो इनका नफका इंसान पर वाजिब होगा। तो कहते हैं ये सब जो है अमारतुल हाजती, ये मोहताज होने की अलामत हैं, लितहक्कुकिल अजजी, आजजी के पाए जाने की वजह से, फइन्नल क़ादिरा अलल कस्बी गनियुम बिकस्बी ही, कस्ब कहते हैं कमाई को, मेहनत वगैरह करके कमाई करना, इसको कस्ब कहते हैं, और गनी कहते हैं मालदार को। कहते हैं फइन्नल क़ादिरा अलल कस्बी, इसलिए क्योंकि जो शख्स कमाई पर कादिर हो, गनियुम बिकस्बी ही, वो अपनी कमाई के जरिए मालदार है। भाई एक आदमी का करीबी महरम रिश्तेदार है लेकिन वो बालिग है और वो अपाहज या अंधा नहीं है, वो खुद मेहनत करके अपना नफका कमा सकता है, तो अगरचे ये तंग दस्त है लेकिन कमाने के तो काबिल है, लिहाजा इसकी कमाई ही मालदारी के कायम मकाम है भाई, लिहाजा इसका नफका किसी पर वाजिब नहीं होगा भाई। तो कहते हैं फइन्नल क़ादिरा अलल कस्बी गनियुम बिकस्बी ही, इसलिए क्योंकि वो शख्स जो कमाई पर कादिर होता है, गनियुम बिकस्बी ही, वो अपनी कमाई के जरिए मालदार है, तो उसका नफका वाजिब नहीं होगा। बिखिलाफिल अबावैनी, बखिलाफ मां बाप के, याद रखो मां बाप अगर वो अगर फकीर हैं, गरीब हैं और वो कमाने के भी काबिल हैं, लेकिन फिर भी उनका नफका वाजिब होगा, तो सवाल पैदा होता है कि क्या वजह है, और करीबी महरम रिश्तेदार हो जब वो कमाने के काबिल हो तो उसका नफका इंसान पर वाजिब नहीं होता, और मां बाप जो है वो चाहे कमाने के काबिल ही क्यों ना हो लेकिन जब वो फकीर हैं तो उनका नफका फिर भी इंसान पर वाजिब हो जाता है। तो जवाब दे रहे हैं कि मां बाप जब गरीब हैं वो अगरचे मेहनत करके अपने लिए कमा सकते हैं लेकिन मेहनत करने में इनको थकन और मशक्कत लाहिक होगी, और हमें तो वालिदैन को तकलीफ देने से मना किया गया है, लिहाजा कमाई पर कुदरत के बावजूद इनका नफका औलाद पर वाजिब होगा। तो कहते हैं बिखिलाफिल अबवैनी, बखिलाफ मां बाप के, लिअन्नहु यलहकुहुमा ताअबुल कस्बी, ताअब का माना है थकन और मशक्कत भाई, बखिलाफ मां बाप के, लिए अन्नहु यलहकुहु मा ताअबुल कस्बी, इसलिए क्योंकि मां बाप जो हैं उनको कमाई की मशक्कत पेश आएगी, वलबलदु मामूरुन बिदफ़ ज़ररि अन्हुमा, और हाल यह है कि औलाद को तो हुक्म दिया गया है कि मां बाप से तकलीफ को दूर करे, लिहाजा जब औलाद मालदार है तो अब मां बाप को कमाई पर मजबूर नहीं किया जाएगा बल्कि औलाद पर उनका नफका आएगा। तो कहते हैं वलवलदु मामूरुन बिदफ़ ज़ररि अन्हुमा, और औलाद को तो हुक्म दिया गया है वालिदैन से तकलीफ को दूर करने का, फतजिबु नफ़क़तुहुमा मा क़ुदरतिहिमा अलल कस्बी, तो वालिदैन का नफका वाजिब होगा बावजूद उनके कमाई पर कुदरत के। आगे देखिए, क़ाला वयजिबु ज़ालिका अला मिक़दारिल मीरासी वयुजबरु अलैह, काला, काला से मुराद साहिब कुदूरी हैं, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वयजिबु ज़ालिका अला मिक़दारिल मीरासी, और ये नफका वाजिब होगा मीरास की मिकदार के बकदर, वयुजबरु अलैही, और इस पर मजबूर किया जाएगा भाई। ये फिर मतन को मतन से जोड़ें, मतन में पीछे क्या आया था कि हर करीबी महरम रिश्तेदार का नफका इंसान पर वाजिब होगा जब वो नाबालिग हो या मुअन्नस हो या अपाहज और अंधा हो, तो फिर इस सूरत में उसका नफका इंसान पर आएगा, और ये नफका मीरास के बकदर आएगा, किसके बकदर आएगा, मीरास के बकदर, यानी करीबी महरम रिश्तेदार जो है मीरास के अंदर उसका जितना हिस्सा बन रहा है नफके का खर्चा भी उस पर उतना ही आएगा। मसलन एक शख्स जो है वो तंगदस्त है और वो अपाहज है जी। एक शख्स तंगदस्त है और अपाहज है और उसका एक भाई है और एक बहन है और वो मालदार हैं, तो दोनों पर नफका आएगा क्योंकि ये जो अपाहज भाई है ये इनका करीबी महरम रिश्तेदार भी है और फकीर भी है, और इन पर नफका वरासत के बकदर आएगा। अगर इनके इस अपाहज भाई का इंतकाल हो जाए और सिर्फ यही दो रिश्तेदार हैं, उसका एक भाई है और एक बहन है, तो ये दोनों उसके वारिस बनेंगे और मीरास उनमें इस तरह तकसीम होगी कि भाई को बहन के मुकाबले में दुगना माल मिलेगा। लिज़करे मिस्लु हज़ल उनसयन, भाई को बहन के मुकाबले में दुगना हिस्सा मिलेगा, तो लिहाजा नफके के अंदर भी भाई का हिस्सा बहन के मुकाबले में दुगना होगा। यानी कुल नफका जो है उसके तीन हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्सा बहन के जिम्मे होगा और दो हिस्से भाई के जिम्मे होंगे। सूरत समझ में आ रही है? तो यह माना है, काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वयजिबु ज़ालिका अला मिकदारिल मीरासी, और ये रिश्तेदारों का नफका जो वाजिब होगा ये मीरास के मिकदार पर होगा, वयुजबरु अलैहि, और इस पर मजबूर किया जाएगा, यानी कजाअन इनको हुक्म दिया जाएगा। अगर वो अपाहज भाई है और ये दूसरे भाई और बहन जो मालदार हैं वो इसकी मदद नहीं कर रहे और वो अपाहज भाई काजी के पास आ गया, तो काजी उनको मजबूर करेगा, उनको हुक्म दिया जाएगा कि इस अपाहज पर खर्च करें। ये माना है, वह युजबरु अलैही, और इस खर्च करने पर उनको मजबूर किया जाएगा। लिअन्न तंसीस, अब वजह जिक्र कर रहे हैं इस मतन में दो बातें जिक्र की, एक तो यह बात जिक्र की कि यह नफका मीरास के बकदर वाजिब होगा और दूसरी बात यह जिक्र की कि इस नफके की अदायगी पर उनको मजबूर किया जाएगा, यानी काजी भी मजबूर कर सकता है अगर वो तंगदस्त जो है काजी के पास आ जाए। तो अब उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं कि यह मीरास के बकदर क्यों वाजिब होगा नफका भाई, तो कहते हैं लिअन्न तंसीस अलल वारिसी तंबीहुन अला इतिबारिल मिकदार। तनसीस भाई स्वाद के साथ है, नस सयुनसिस तनसीस का माना है तसरीह करना। कहते हैं लिअन्न तनसीस अलल वारिसी, इसलिए क्योंकि वारिस पर तसरीह करना, भाई देखिए ना आयत के अंदर वारिस के लफ्ज पर तसरीह की गई थी, वह अलल वारिसी मिसलु ज़ालिका, वारिस पर भी इसी के मिसल जिम्मेदारी है, तो आयत के अंदर वारिस की तसरीह की गई है, उसको सराहतन जिक्र किया गया है। और याद रखो ये जो वारिस है, वारिस ये इसमें फाइल है, ये मुश्तक है, और आप जाब्ता पढ़ चुके हैं मुश्तक पर जो हुक्म लगाया जाए उसके इल्लत मुश्तक मिनहू होता है, तो वारिस पर नफका वाजिब किया जा रहा है, मालूम हुआ इसकी इल्लत वरासत है भाई, इसके इल्लत वरासत है, तो जो जितना वारिस बन रहा है उसी के बकदर उस पर नफका भी आएगा भाई। तो कहते हैं लिअन्न तंसीस अलल वारिसी, इसलिए क्योंकि आयत के अंदर वारिस पर जो तसरीह की गई है, तंबीहुन अला इतिबारिल मिकदारी, ये मिकदार के एतबार पर तंबीह है, ये मिकदार के एतबार पर तंबीह की गई है, यानी यहां मिकदार मोतबर है वारिस होने के एतबार से जी। वारिस होने के एतबार से मिकदार मोतबर है, जिसको वरासत में ज्यादा हिस्सा मिलेगा उस पर नफका भी ज्यादा आएगा भाई। तो कहते हैं लिअन्न तंसीस अलल वारिसी, इसलिए क्योंकि वारिस पर तसरीह करना, तंबीहुन अला इतिबारिल मिकदारी, ये मिकदार के मोतबर होने पर तंबीह है, यानी मिकदार के मोतबर होने पर तंबीह की जा रही है, यानी बकदरे वरासत मिकदार वाजिब होगी वारिस पर भाई। वली अन्नल गुर्म बिल गुनमी, वली अन्नल गुर्म, गुर्म कहते हैं नुकसान और जमान को भाई, और गुनमुन गुनम कहते हैं फायदे और नफे को। फिका का मशहूर जाबता है कि अल गुर्म बिल गुनमी, अल गुर्मो बिल गुनमी, के नुकसान जो है वो फायदे के बदले में है, एक शख्स को एक चीज का फायदा पहुंच रहा है तो उसका नुकसान भी उसी शख्स को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक आदमी दूसरे का वारिस बन रहा है यानी उसको नफा हासिल होगा तो खर्चा भी इसी पर आएगा उसका जिंदगी में अगर वो तंगदस्त है भाई। तो कहते हैं वली अन्नल गुर्म बिल गुनमी, और इसलिए क्योंकि जो जमान होता है या यूं कहें जो नुकसान होता है बिल गुनमी, वो नफे के मुकाबले में है, नुकसान जो है वो नफे के मुकाबले में है, तो यानी खर्च करना वो मीरास के मुकाबले में है। नफे से क्या मुराद लें? मीरास। और नुकसान से क्या मुराद लें? खर्च करना। तो खर्च करना किसके मुकाबले में है? मीरास के मुकाबले में है भाई। ये शख्स वारिस बनेगा, इसको नफा होगा तो खर्चा भी इसी के ऊपर आएगा भाई। तो कहते हैं वली अन अल गुरमा बिल गुनमी, और इसलिए क्योंकि नुकसान जो है, या यूं कहें कि जमान जो है बिल गुनमी, वो फायदे के मुकाबले में होता है। वल जबरुली ईफा इहक इन मुस्तहक इन, मुस्तहक का माना है वाजिब। भाई वाजिब भाई ऊपर मतन में आया था कि ये जो नफका वाजिब होगा करीबी महरम रिश्तेदार पर, ये मीरास के बकदर होगा भाई, और वह युजबरु अलैही, और इस खर्च करने पर मजबूर किया जाएगा भाई। तो उसकी वजह जिक्र कर रहे हैं कि मजबूर क्यों किया जाएगा, काजी क्यों जबरन इस रिश्तेदार को हुक्म देगा। कहते हैं वल जबरु लि ईफाई हक इन मुस्तहक इन, ईफा का माना है अदायगी, मुस्तहक का माना है वाजिब। वल जबरु लि ईफाई हक इन मुस्तहक इन, और ये जो खर्च करने पर मजबूर किया जाएगा, लीफा हक इन मुस्तहकिन, ये वाजिब हक को अदा करने के लिए है। जब ये करीबी महरम रिश्तेदार है और इस पर उसका नफका वाजिब हो रहा है, तो वो चीज जो इंसान पर वाजिब हो उस पर काजी उसको मजबूर कर सकता है भाई। तो कहते हैं वल जबरुली ईफा हक इन मुस्तहकिन, और ये जो खर्च करने पर मजबूर किया जाएगा ये वाजिब हक को अदा करने के लिए है। काला व तजिब नफकत उलिबनतिल बालिगति वलिबन जमीनी अला अबवई ही असलासा। भाई ये आगे मतन है भाई, और काला से मुराद साहिब कुदूरी हैं। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं व तजिब नफकत उलिबनतिल बालिगति, और बालिग बेटी का नफका वाजिब होगा। वलिबन जमीनी, और इसी तरह अपाहज बेटे का नफका वाजिब होगा। अला अबवई ही, उसके मां बाप पर, असलासन तीन हिस्से करके, तीन हिस्से करके उसका नफका वाजिब होगा। एक आदमी है उसकी बालिग बेटी है, या उसका अपाहज बेटा है और वो बालिग है, तवज्जो है भाई, ना बालिग औलाद हो उसका तो सारा खर्चा बाप पर वाजिब होता है, लेकिन अगर बालिग बेटी है और वो फकीर है, या बालिग बेटा है लेकिन वो अपाहज है, तो इनका नफका आप किन पर आएगा। तो यहां मतन के अंदर जिक्र है कि इनका नफका मां बाप दोनों पर वाजिब होगा और मीरास के बकदर वाजिब होगा। अगर एक आदमी का इंतकाल हो और सिर्फ उसके मां बाप जिंदा हैं, तो मां को सुलुस तीसरा हिस्सा मिलता है और बाकी सारा माल बाप ले जाता है, यानी दो सुलुस बाप को मिल जाता है। जब एक आदमी के रिश्तेदारों में से सिर्फ मां बाप जिंदा हैं, तो मां को कितना हिस्सा मिलेगा, सुलुस, और बाप को दो सुलुस, यानी दो तिहाई हिस्सा बाप को मिलेगा। तो चुनांचे ये जो मतन के अंदर आया कि नफका भी मां बाप पर इसी के बकदर आएगा, बालिग बेटी के लिए या अपाहज बालिग बेटे का जो नफका है उसके तीन हिस्से किए जाएंगे, दो हिस्से बाप को अदा करने पड़ेंगे और एक हिस्सा मां को, यानी मीरास के बकदर होगा। यह तो मतन में आया, लेकिन आगे चलकर आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि जाहिर रिवायत यह है कि इनका खर्चा सिर्फ बाप पर आएगा। जैसे सगीर का, नाबालिग का खर्चा जो है सिर्फ बाप पर होता है, तो इसी तरह बालिग बेटी जो है या अपाहज बालिग बेटा जो है, इनका नफका भी सिर्फ बाप पर ही आएगा भाई, क्योंकि जब ये मोहताज हैं तो ये सगीर की तरह हो गए, और सगीर का खर्चा तो सिर्फ बाप पर आता था, तो इनका खर्चा भी सिर्फ बाप पर आएगा। और इसी पर फतवा है भाई कि अपनी औलाद का खर्चा सिर्फ बाप पर आता है, चाहे नाबालिग हो चाहे बालिग हो, और मुअन्नस हो या अपाहज हो भाई। तो मतन में दूसरी रिवायत है भाई, पहले वो जिक्र करेंगे। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं व तजिबु नफकत उलिबनतिल बालिगति वलिबन जमीनी अला अबवैही असलासा, और बालिग बेटी और अपाहज बेटे का नफका वाजिब होगा। अला अबवैही, उसके मां बाप पर, असलासन तीन हिस्से करके। अलल अब सुलुसानी, बाप पर दो तिहाई वाजिब होगा। व अलल उम्मी सुलुसु, और मां पर एक तिहाई। लिअन्न अल मीरास लहुमा अला हादल मिकदारी, इसलिए क्योंकि इनकी मीरास भी इसी मिकदार पर है। एक आदमी का इंतकाल हो और सिर्फ मां बाप जिंदा है, तो उनमें मीरास भी इसी तरह तकसीम होगी, बाप को मां के मुकाबले में दुगना माल मिलेगा। قال العبد الضعيف, इससे मुराद साहिब हिदाया हैं। قال العبد الضعيف, साहिब हिदाया फरमाते हैं, هذا الذي ذكره روايه الخصاف والحسن رحمهم الله, साहिब हिदाया फरमाते हैं कि ये जो मतन के अंदर साहिब कुदूरी ने रिवायत जिक्र फरमाई ये इमाम खस्साफ और इमाम हसन इब्ने जियाद रहमतुल्लाह की रिवायत है जो वो इमाम साहिब से नकल फरमाते हैं। ये रिवायत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से नकल फरमाई है इमाम खस्साफ ने और इमाम हसन इब्ने जियाद रहिमहुमल्लाह ने बई, जबकि जाहिर रिवायत में क्या है कि सारा खर्चा बाप पर आएगा। कहते हैं हाद अल्लदी ज़करहु रिवायतुल खस्साफ वल हसन रहिमहुमल्लाह, और ये जो साहिब कुदूरी ने जिक्र फरमाई ये इमाम खस्साफ और इमाम हसन इब्ने जियाद रहिमहुमल्लाह की रिवायत है। वफी जाहिर रिवायती, और जाहिर रिवायत में ये है कि कुल्लुन नफकति अलल अबी, के सारा नफका बाप पर होगा। लिकौलिही तआला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, व अलल मौलूदि लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, वालल मौलूदी लहू, और बच्चे के बाप पर वाजिब है रिस्क हुन्ना व किस्वतु हुन्ना, इन बीवियों का रिजक भी और इनके कपड़े भी। तो जब बच्चे की वजह से माओ का रिजक बाप पर वाजिब है तो बच्चे का रिजक बतरीके औला बाप पर वाजिब होगा भाई। तो मालूम हुआ औलाद का रिजक बाप के जिम्मे होता है जब वो मोहताज हो भाई। तो कहते हैं लिकौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, वालल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, और बाप पर इन औरतों का रिजक भी है और उनके कपड़े भी हैं। वसारकल वलदी सगीरी, और ये अपाहज बेटा भी नाबालिग बेटे की तरह हो गया। ये जब अपाहज बेटा है तो यह मोहताज हुआ, तो यह भी किसकी तरह हुआ? नाबालिग बेटे की तरह। और नाबालिग औलाद का तो नफाका सिर्फ बाप पर होता है, तो इस अपाहज बेटे का नफका भी सिर्फ बाप पर होगा और इसी तरह बालिग बेटी का भी भाई। आगे देखिए वजहुल फर्क अलर रिवायतिल उला, अब फर्क की वजह बयान कर रहे हैं भाई। जाहिर रिवायत में तो क्या आया कि नाबालिग औलाद का नफका जैसे सिर्फ बाप पर होता है, इसी तरह बालिग औलाद अगर मोहताज है तो उनका नफका भी सिर्फ बाप पर आएगा। तो मालूम है जाहिर रिवायत में बालिग और नाबालिग में कोई फर्क नहीं किया गया, लेकिन इमाम खस्साफ वाली रिवायत लें तो उसमें फर्क किया गया है कि नाबालिग का खर्चा सारा बाप पर है और बालिग बेटी है या अपाहज बालिग बेटा है तो उसका नफका मां बाप दोनों पर है। मालूम हुआ इमाम खस्साफ रहिमहुमल्लाह की रिवायत में बालिग औलाद और नाबालिग औलाद में फर्क किया गया है, नाबालिग का खर्चा सिर्फ बाप पर और बालिग का खर्चा मां बाप दोनों पर। तो यह फर्क क्यों किया गया, अब उसकी वजह बयान फरमा रहे हैं साहिब हिदाया। तो कहते हैं वजहुल फर्क अलर रिवायतिल उला, और पहली रिवायत पर फर्क की वजह जो है वो ये है कि अन्नहु जतमात लिल अबी फिस सगीरी विलायतुन व मुअनतुन। मुअनतुन कहते हैं मशक्कत को, और इसका मुराद है इससे खर्चा भाई। खर्चा भाई नाबालिग औलाद का खर्चा भी बाप पर होता है और विलायत भी बाप को उन पर हासिल होती है, बाप जहां चाहे उनका निकाह कर सकता है। तो बाप को नाबालिग औलाद पर विलायत भी हासिल है और उनका खर्चा भी बाप के जिम्मे है, लेकिन बालिग औलाद पर बाप को विलायत हासिल नहीं, तो दोनों में फर्क है। लिहाजा नाबालिग का खर्चा तो बाप पर आएगा लेकिन बालिग का खर्चा सारा बाप पर नहीं आएगा बल्कि मां पर भी आएगा। यह फर्क बयान फरमा रहे हैं साहिब हिदाया इमाम खस्साफ रहमतुल्लाह की रिवायत के मुताबिक। तो कहते हैं वजहुल फर्क अलर रिवायतिल उला, तो पहली रिवायत पर फर्क की वजह यह है कि अन्नहुज तमात लिल अबी फिस सगीरी, के बाप के लिए जमा हो गई नाबालिग में विलायतुन व मुअनतुन, विलायत भी व मुअनतुन और खर्चा भी, यानी उसका सारा खर्चा भी किस पर है? बाप पर। तो नाबालिग के लिए बाप में जमा हो गई विलायतुन व मुअनतुन, विलायत भी और खर्चा भी। हत्ता वजबत अलैहि सदकतुल फित्री, यहां तक कि बाप पर ही वाजिब है इस नाबालिग औलाद का सदका फितर। फख्तस बी नफकती ही, तो लिहाजा बाप खास हो गया इस नाबालिग के नफके के साथ, उसी को खर्च करना पड़ेगा। वला कदालिकल कबीरू, और बड़ा जो है यानी बालिग जो है वो तो ऐसा नहीं है। लेन इदाम विलायती फी ही, क्योंकि उसके अंदर बाप की विलायत मादूम है, बाप को उस पर विलायत हासिल नहीं, बाप ऐसा नहीं कर सकता कि जहां चाहे उनका निकाह करवा दे। तो कहते हैं वला कदाली कल कबीर, और जो बालिग है वो ऐसा नहीं है, लेनाइदामिल विलायती फी ही, कि उसके अंदर बाप की विलायत मादूम है, फतुशारी को हुल उम, तो लिहाजा बाप के साथ मां शरीक होगी, इस बालिग के नफके में बाप के साथ मां भी शरीक होगी। वफी गैरिल वालिदी युअतबरु कद्रुल मीरासी। भाई यहां तक क्या बात हुई कि इमाम खसाफ रहमतुल्लाह की रिवायत के मुताबिक तो बालिग औलाद के खर्चे में मां बाप दोनों शरीक होंगे, लेकिन जाहिर रिवायत में है कि जैसे नाबालिग औलाद का खर्चा बाप पर होता है, इसी तरह बालिग औलाद का खर्चा भी सिर्फ बाप पर होगा। और मैंने बताया इसी पर फतवा भी है भाई, इसी पर फतवा भी है। अलबत्ता बाप के अलावा बाकी रिश्तेदारों में मीरास की मकदार मोतबर है, वहां सारा खर्चा किसी एक रिश्तेदार पर नहीं आएगा, बल्कि वहां मीरास की मकदार को देखा जाएगा। तो यह माना है वफी गैरिल वालिदी युअतबरु कद्रुल मीरासी, और बाप के अलावा और रिश्तेदारों में मीरास की मकदार मोतबर है। हत्ता तकूनु नफकतु सगीर अलल उम्मी, यहां याद रखो ये हत्ता नसब नहीं देगा, क्योंकि हत्ता के नसब देने की शराइत यहां पूरी नहीं है भाई। तो कहते हैं हत्ता तकूनु नफकतु सगीर अलल उम्मी वल जद्दी असलासा, यहां तक कि नाबालिग का खर्चा मां और दादा पर तीन हिस्से होगा। भाई देखिए भाई, जाहिर रिवायत में बतला दिया कि अगर बाप जिंदा है तो फिर बालिग और नाबालिग औलाद का सारा खर्चा बाप पर ही आएगा, लेकिन अगर बाप का इंतकाल हो जाए, अब उस सगीर की मां भी जिंदा है और उसका दादा भी जिंदा है, तो आप पढ़ चुके हैं कि जब बाप का इंतकाल हो जाए तो दादा उसके कायम मकाम होता है, लेकिन यहां पर दादा बाप के कायम मकाम नहीं होगा, बल्कि मां और दादा दोनों पर नफका आएगा। जाहिर रिवायत में आपको बतला दिया कि औलाद नाबालिग हो या बालिग हो, सारा खर्चा बाप पर, लेकिन बाप के अलावा कोई और रिश्तेदार हैं तो उन पर सारा नफका नहीं आएगा, बल्कि मीरास के बकदर आएगा। यहां तक कि बाप का अगर इंतकाल हो गया और बाप की जगह अब दादा मौजूद है, तो दादा पर सारा खर्चा नहीं आएगा, बल्कि दादा पर मीरास के बकदर खर्चा आएगा। लिहाजा एक आदमी का इंतकाल हो और उसकी मां भी जिंदा है और दादा भी जिंदा है, तो फिर इस सूरत में याद रखो मां को तीसरा हिस्सा मिलता है, जबकि बाकी माल दादा ले जाएगा भाई, तो दादा को मां के मुकाबले में दुगना माल मिला है, लिहाजा नफके का खर्चा भी मां और दादा पर इसी तरह आएगा, दादा पर मां के मुकाबले में दुगना खर्चा आएगा। यह माना है हत्ता तकूनु नफकतु सगीर अलल उम्मी वल जद्दी असलासा, यहां तक कि नाबालिग का खर्चा मां और दादा पर तीन हिस्से होकर होगा, यानी एक तिहाई मां पर और दो तिहाई दादा पर। व नफकतुल अखिल मुअसिरी अलल अखवातिल मुतफर्रिकातिल मुसिराती अखमासन अला कद्रिल मीरास। भाई सूरत मसला यह कि एक आदमी है और वो तंगदस्त है और अपाहज है, और उसकी तीन बहनें हैं, वो तीनों मालदार हैं, लेकिन वो तीनों बहनें मुख्तलिफ हैं, एक हकीकी बहन है और एक अल्लाती बहन है और एक अखियाफी बहन है। आपने पढ़ा कि हकीकी बहन उसको कहते हैं कि ये भाई और बहन दोनों के मां बाप एक ही हों, तो ये उस भाई की हकीकी बहन हुई, और अगर दोनों का बाप तो एक है लेकिन माएं अलग अलग हैं, यानी एक आदमी की दो बीवियां हैं और एक बीवी से बेटा हुआ और दूसरी से बेटी, तो ये आपस में अल्लाती भाई बहन हैं, दोनों के बाप तो एक है लेकिन माएं अलग अलग हैं। और बाज औकात ऐसा होता है कि मां एक होती है और बाप अलग अलग होता है, मसलन एक औरत ने जैद से निकाह किया था, उससे बेटा हुआ, फिर जैद का इंतकाल हुआ, इस औरत ने बाद में किसी और से निकाह कर लिया और उससे बेटी हुई, तो अब ये जो भाई बहन हैं इनकी मां एक है लेकिन बाप अलग अलग है, तो इनको अखियाफी भाई बहन कहते हैं जी। तो हकीकी बहन वो है जो मां बाप शरीक है, अल्लाती बहन जो सिर्फ बाप शरीक है, और अखियाफी बहन जो मां शरीक है। अब एक आदमी का अगर इंतकाल हो जाए और उसकी एक हकीकी बहन है, एक अल्लाती बहन है और एक अखियाफी बहन है, तो इनमें मीरास इस तरह तकसीम होगी कि हकीकी बहन जो है उसको निसफ मिलेगा, और अल्लाती बहन जो है उसको सुदुस मिलेगा और अख्याफी बहन को भी सुदुस मिलेगा। बल्कि ये नक्शे की सूरत आप बना लें कापी पर, फिर बात आपके लिए वाजे हो जाएगी। भाई भाई एक सीधी लकीर खींचिए, ये मैयत है, मैयत है, और इस मैयत के नीचे तीनों बहनों को अलग अलग हमने लिखना है। पहले किनारे के नीचे लिख दीजिए हकीकी बहन, दरमियान में लिखिए कुछ फासले पर अल्लाती बहन, और फिर आखिरी किनारे के नीचे लिख लीजिए अखियाफी बहन। और याद रखो जब हकीकी बहन अकेली हो तो उसको निसफ मिलता है, तो हकीकी बहन के नीचे निसफ लिख लीजिए। और अल्लाती बहन जब वो हकीकी बहन के साथ आ जाए तो फिर उसको सुदुस मिलता है। ये एक हकीकी बहन है, उसके साथ अल्लाती बहन आ गई। अगर दो हकीकी बहनें होती तो फिर इस अल्लाती बहन को कुछ भी नहीं मिलना था, क्योंकि मुअन्नस को ज्यादा से ज्यादा दो तिहाई दिया जा सकता है, तो वो दो तिहाई दो बहनों ने ले जाना था, लेकिन यहां तो एक बहन है हकीकी बहन। तो हकीकी बहन का कितना हिस्सा लिखा? निसफ। और अल्लाती बहन के नीचे लिख लीजिए सुदुस भाई, तो इसका हिस्सा सुदुस हुआ। ये निसफ और सुदुस को मिलाएं तो देखें ये सुलुसान बन जाता है, दो तिहाई, और मुअन्नस को ज्यादा से ज्यादा दो तिहाई ही दिया जाता है। और फिर अख्याफी बहन, अख्याफी बहन के नीचे भी सुदुस लिख दीजिए, इसका हिस्सा भी छठा हिस्सा है। अख्याफी भाई बहन जब एक हो तो उनको सुदुस मिलता है जी। तो यहां दो किस्म के हिस्से आ गए सारे मसले में, एक निसफ आया और इसके साथ सुदुस भी आ गया। और निसफ और सुदुस जब एक मसले के अंदर इकट्ठे हो जाएं तो मसला छह से बनाते हैं। तो लिहाजा ये मसला छह से बनाइए। ये जहां पर आपने हकीकी बहन लिखा था इस किनारे पर लकीर के ऊपर जो है वो छह लिख लीजिए, इससे हम मसला बना रहे हैं। छह से हमने मसला बनाया और छह का निसफ हमने देना है हकीकी बहन को, तो छह का निसफ कितना? तीन। तो ये तीन हकीकी बहन का हिस्सा हुआ, तो हकीकी बहन के नीचे तीन लिख लीजिए। और छह का सुदुस यानी छठा हिस्सा वो कितना है? एक। तो वो एक जो है ये हिस्सा हुआ अल्लाती बहन का, तो अल्लाती बहन के नीचे एक लिख लीजिए। इसी तरह अख्याफी बहन का हिस्सा भी सुदुस है और छह का सुदुस एक है, तो उसके नीचे भी एक लिख लीजिए। अब देखो हमने मसला बनाया छह से, लेकिन जो नीचे हिस्से दिए हकीकी बहन को तीन, अल्लाती बहन को भी एक और अख्याफी बहन को भी एक, इनको जमा कर लें, तीन जमा एक जमा एक, तीन और एक और एक, ये जमा किया तो ये पांच बन गए। तो मसला बनाया था छह से और कुल हिस्से नीचे बन रहे हैं पांच, तो लिहाजा यहां छह के साथ थोड़ा सा फासला देकर लिख दीजिए रद्दुन, रा और दाल भाई रद, और फिर उस रद से थोड़े से फासले पर पांच लिख लीजिए। यानी मसला बनाया था छह से लेकिन फिर इसका रद हो गया किसकी तरफ? पांच की तरफ। तो अब मसला मुकम्मल हुआ। मालूम हुआ एक आदमी का इंतकाल हो और उसकी एक हकीकी बहन जिंदा हो, एक अल्लाती बहन जिंदा हो और एक अख्याफी बहन जिंदा हो, तो कुल माल के पांच हिस्से करेंगे और पांच में से तीन हिस्से हकीकी बहन के होंगे, एक हिस्सा अल्लाती बहन का होगा और एक हिस्सा अख्याफी बहन का होगा। तो यह है मीरास की तकसीम भाई। और अब हम जो सूरत कर रहे हैं कि भाई जो है वो अपाहज है और तंगदस्त है और उसकी तीन बहनें हैं, एक हकीकी बहन है, एक अल्लाती बहन है और एक अख्याफी बहन है, तो इन पर मीरास के बकदर ही खर्चा आएगा। लिहाजा इस अपाहज माजूर और फकीर भाई का जो नफका है उसके पांच हिस्से किए जाएंगे, तीन हिस्से हकीकी बहन को अदा करने होंगे, एक हिस्सा अल्लाती बहन को अदा करना होगा और एक हिस्सा अख्याफी बहन को। बात समझ में आ गई? तो यही बयान कर रहे हैं, कहते हैं वन्ना फकतुल अखिल मुअसिरी, और तंगदस्त भाई का नफका। और यह भी याद रखना तंगदस्त होने के साथ साथ इस भाई का अपाहज या अंधा होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर यह अपाहज या अंधा नहीं है फिर तो यह खुद कमा सकता है। तो कहते हैं वन्ना फकतुल अखिल मुअसिरी, और तंगदस्त भाई का नफका जो है अलल अखवातिल मुतफर्रिकातिल मुसिराती, वो मुख्तलिफ किस्म की मालदार बहनों पर अखमासन पांच हिस्से होकर वाजिब होगा, अला कदरिल मीरास, मीरास के बकदर। मुसिर कहते हैं खुशहाल को, मालदार को। फिर तर्जमा देख लीजिए, व नफकतुल अखिल मुसिरी, और तंगदस्त भाई का नफका, अलल अखवातिल मुतफर्रिकातिल मुसिराती, वो मालदार मुख्तलिफ किस्म की बहनों पर अखमासन पांच हिस्से होकर वो नफका वाजिब होगा, अला कदरिल मीरासी, मीरास के बकदर। गैर अन्नल मुअतबर अहलियतुल इर्से फिल जुमलती ला इहराजुहू। यहां से साहिब हिदाया बतला रहे हैं कि ये जो नफका वारिसों पर आएगा, इसमें हकीकतन वारिस होने का एतबार नहीं है, बल्कि वारिस होने की सलाहियत का एतबार है। वारिस होने की सलाहियत का एतबार है। एक आदमी में वारिस होने की सलाहियत मौजूद है तो उस पर नफका वाजिब होगा, चाहे हकीकत में उसको बाद में कुछ भी माल ना मिले। क्योंकि हकीकतन इसको कितना माल मिलेगा ये तो अभी पता ही नहीं है जी। याद रखो, वरासत उसी को मिलती है जो मैयत की मौत के वक्त जिंदा हो जी। एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसका बेटा जिंदा है तो ये बेटा उसका वारिस बनेगा, लेकिन अगर ये बेटा उस मैयत की जिंदगी में ही फौत हो गया था तो फिर ये वारिस नहीं बनेगा भाई जी। तो यहां पर भी जो नफका आएगा उसमें वारिस होने की सलाहियत को देखा जाएगा, हकीकतन वारिस होने को नहीं देखा जाएगा। क्योंकि हकीकतन वारिस होने का तो अभी पता ही नहीं है, हो सकता है ये पहले इंतकाल कर जाए, फिर तो ये वारिस ही नहीं बनेगा भाई। नीज इसी तरह बाज औकात एक वारिस की वजह से दूसरा वारिस महरूम हो जाता है, मसलन मरने वाले का बेटा भी है और पोता भी मौजूद है, तो फिर याद रखो जब बेटा मौजूद हो तो पोते को कुछ भी नहीं मिलता, तो देखो बेटे की वजह से पोता महरूम हो गया, महजूब हो गया। और बाज औकात एक वारिस की वजह से दूसरे वारिस के हिस्से में कमी आ जाती है, मसलन मरने वाले की मां को सुलुस मिलता है, तीसरा हिस्सा, लेकिन अगर मरने वाले की औलाद मौजूद है या मरने वाले के दो भाई बहन मौजूद हैं तो फिर मां को सुलुस नहीं मिलता, फिर छठा हिस्सा मिलता है, यानी सुदुस भाई जी। तो देखो औलाद की वजह से मां का हिस्सा सुलुस से कम होकर सुदुस हो गया, या मरने वाले के दो भाई बहन जिंदा हैं तो उनकी वजह से मां का हिस्सा सुलुस से कम होकर सुदुस हो गया। तो मालूम हुआ बाज औकात एक वारिस की वजह से दूसरा वारिस जो है महरूम हो जाता है, या इसी तरह बाज औकात एक वारिस की वजह से दूसरे वारिस के हिस्से में कमी आ जाती है। तो लिहाजा यहां पर जो नफका वाजिब होगा एक शख्स का दूसरे शख्स पर, उसमें वारिस होने की सलाहियत को देखा जाएगा, हकीकत में वो वारिस बनता है या नहीं बनता उसको नहीं देखा जाएगा भाई। तो कहते हैं गैर अन्नल मुअतबरा अहलियतुल इर्सी, इलावा इसके कि वो चीज जो मुअतबर है अहलियतुल इर्सी, वो वारिस होने की सलाहियत है, फिल जुमलती मजमूई एतबार से, ला इहराजुहू, ना के वरासत को समेटना। अहरजा युहरिजु इहराज के माने हैं समेट लेना, जमा कर लेना, यानी हकीकत के अंदर वारिस बनना, वरासत को समेट लेना, यहां उसका एतबार नहीं है, बल्कि वारिस होने की सलाहियत का एतबार है भाई। देखो आगे साहिब हिदाया मिसाल जिक्र फरमाएंगे, उससे खूब वजाहत हो जाएगी। कहते हैं गैर अन्नल मुअतबरा अहलियतुल इर्सि फिल जुमलती ला इहराजुहू, इलावा इसके कि वो चीज जो मुअतबर है वो वारिस होने की सलाहियत है, फिल जुमलती मजमूई एतबार से, ला इहराजुहू, उस वरासत को समेटना जो है वो मुअतबर नहीं है। फइन्नल मुअसिरा इज़ा काना लहू खालुन वब्नु अम्मिन। सूरत मसला ये, एक आदमी है अपाहज है और तंगदस्त है, और इसका मामू भी जिंदा है और इसके चचा का बेटा भी जिंदा है। अब मामू जो है वो करीबी महरम रिश्तेदार है, जबकि चचा का बेटा वो रिश्तेदार तो है लेकिन महरम नहीं है भाई। तो इस आदमी का नफका मामू पर वाजिब होगा, इस आदमी का नफका मामू पर वाजिब होगा, क्योंकि वो करीबी महरम रिश्तेदार है, चचा का बेटा करीबी महरम रिश्तेदार नहीं है भाई, क्योंकि चचा की बेटी से तो निकाह जायज होता है भाई। तो मालूम हुआ चचा की जो औलाद है वो महरम नहीं है भाई। अब देखो अगर इस शख्स का इंतकाल हो जाए तो चचा का बेटा आसबा होने की वजह से सारा माल ले जाएगा। इसका इंतकाल हुआ, सिर्फ इसका मामू जिंदा है और चचा का बेटा जिंदा है, तो चचा का बेटा सारा माले मीरास ले जाएगा, और मामू जो है उसके साथ रिश्ता मां के वास्ते से है, लिहाजा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो देखो हकीकत मीरास को देखा जाए तो हकीकतन तो चचा का बेटा वारिस बन रहा है, मामू तो वारिस नहीं बन रहा, लिहाजा सारा नफका किस पर आना चाहिए था, चचा के बेटे पर। लेकिन शरीयत ने चचा के बेटे पर नफका वाजिब नहीं किया बल्कि मामू पर नफका वाजिब किया है। मालूम हुआ यहां हकीकत मीरास का एतबार नहीं है बल्कि वारिस होने की सलाहियत मोतबर है, और मामू में भी वारिस होने की सलाहियत है। अगर यह चचा का बेटा न होता तो फिर मामू वारिस बन जाता। बात समझ में आ गई? तो यह माना है फैनल मौसरा इजाकान लहू खालू वबनो अमीन, ये कहते हैं इसलिए क्योंकि तंग दस्त जो है जब उसका मामू और चचा का बेटा हो, तकून नफकत हु अला खाली ही, तो इस तंग दस्त का नफका इसके मामू पर होगा। वह मीरास हू युहरिज हुबनो अम्मी ही, और जबकि इसकी मीरास जो है उसको जमा कर लेगा इसके चचा का बेटा, यानी मीरास सारी वो ले जाएगा। तो हकीकत मीरास का एतबार नहीं है बल्कि वारिस होने की सलाहियत मोतबर है। भाई आगे देखिए, वला तजिबु नफकतुहुम माख्तिलाफि दीन लिबुतलानी अहलियतिल इर्से वला बुद्ध मिन एतबारी ही। भाई साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि दीन मुख्तलिफ हो तो इस सूरत में सिर्फ बीवी और उसूल और फुरू का नफका इंसान पर वाजिब होता है, जबकि इनके अलावा अगर कोई और करीबी महरम रिश्तेदार है वहां अगर दीन मुख्तलिफ है तो उनका नफका वाजिब नहीं होगा। वजह यह कि और करीबी महरम रिश्तेदारों पर जो नफका वाजिब होता है वो मीरास के बकदर होता है, और जब दीन मुख्तलिफ है फिर तो एक दूसरे के वारिस ही नहीं बन सकते, जब वारिस ही नहीं बनेंगे तो नफका भी वाजिब नहीं होगा। तो कहते हैं वला तजिबु नफकतुहुम माख्तिलाफि दीनी, और ये करीबी महरम रिश्तेदारों का नफका वाजिब नहीं होगा दीन के मुख्तलिफ होने के साथ। लिबुतलानी अहलियतिल इर्सी, वरासत की अहलियत के बातिल होने की वजह से कि अब इनमें वरासत की अहलियत ही नहीं जब दीन मुख्तलिफ है। भाई वला बुद्ध मिन एतबारी ही, और वरासत का एतबार जरूरी है, वरासत का एतबार जरूरी है। फिर देख लीजिए तर्जमा, लिबुतलानी अहलियतिल इर्सी वला बुद्ध मिन एतबारी ही, इसलिए क्योंकि वरासत की अहलियत बातिल हो गई और उसका एतबार तो जरूरी है। वला तजिबु अलल फकीरी, अच्छा भाई ये जो करीबी महरम रिश्तेदार हैं इनका नफका तब वाजिब होगा जब दीन भी एक हो, और नीज ये आदमी जो है ये तंग दस्त न हो, ये खुद खुशहाल हो, मालदार हो, फिर ही इस पर दूसरे का नफका वाजिब होगा। अगर यह खुद ही फकीर है फिर तो यह खुद मोहताज है, तो इस पर किसी दूसरे का नफका वाजिब नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं वला तजिबु अलल फकीरी, और यह नफका फकीर पर भी वाजिब नहीं होगा। लिअन्नहा तजिबु सिलतन, इसलिए क्योंकि यह नफका वाजिब हुआ है बतौर एहसान के। वह हुआ यस्तहिक्कुहा अला गैरिही, और यह फकीर यह तो खुद एहसान का मुस्तहिक है, अला गैरिही गैर पर किसके साथ एहसान किया जाए। फकैफ तुस्तहक्कु अलैहि, तो कैसे इस पर नफका वाजिब किया जा सकता है। तुस्तहक्कु का क्या माना कर लेंगे यहां, वाजिब करना। फकैफ तुस्तहक्कु अलैहि, तो इस फकीर पर नफका कैसे वाजिब किया जा सकता है। बिखिलाफी नफकति ज़ौजती व वलदिहि सगीरी, भाई करीबी महरम रिश्तेदारों का नफका मालदार पर तो वाजिब किया जा सकता है लेकिन तंग दस्त पर वाजिब नहीं किया जा सकता। लेकिन बीवी और नाबालिग औलाद उनका नफका तो हर हाल में इंसान को देना पड़ेगा चाहे वो तंग दस्त ही क्यों ना हो, क्योंकि उसने खुद इस औरत से निकाह किया है। भाई तो जब औरत से निकाह किया है तो औरत का खर्चा भी और इससे जो औलाद पैदा होगी उसका खर्चा भी इस पर आएगा। भाई तो कहते हैं बिखिलाफी नफकति ज़ौजती व वलदिहि सगीरी, बखिलाफ बीवी और नाबालिग औलाद का नफका। लिअन्नहु इल्तज़महा, इसलिए क्योंकि वो इस आदमी ने खुद अपने ऊपर लाजिम किया है, वो नफका औलाद और बीवी का नफका खुद अपने ऊपर लाजिम किया है। बिल इकदामी अलल अक्दी, अक्द निकाह पर पेशकदमी करके, जब इसने एक औरत से निकाह किया है तो इसने खुद आकद के जरिए उसके नफके को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। तो कहते हैं लिअन्नहुल तज़ामहा, इसलिए क्योंकि इस तंगदस्त ने बीवी के नफके को खुद अपने ऊपर लाजिम किया है। बिल इकदामी अलल अक्दी, अक्दे निकाह पर पेश कदमी करके। इज़िल मसालिहु ला तंतज़िमु दूनहा, इसलिए क्योंकि निकाह की जो मसलहतें हैं ला तंतज़िमु दूनहा, उनका इंतजाम नहीं हो सकता नफके के बगैर। निकाह की मसलहतों का इंतजाम नफके के बगैर नहीं हो सकता। एक औरत से निकाह किया है और आप अपना घर बसाकर रखना चाहते हैं तो नफका आपको देना पड़ेगा। इदिल मसालिहु ला तंतज़िमु दूनहा, इसलिए क्योंकि निकाह की जो मसलहतें हैं उनका इंतजाम नफके के बगैर नहीं हो सकता। वला यअमलु फी मिस्लिहल इअसारु, और तंगदस्ती इस जैसी चीजों में अमल नहीं करती। यह आदमी बेशक तंगदस्त है लेकिन बीवी और नाबालिग औलाद का नफका देना पड़ेगा क्योंकि वो इसने खुद आकद के जरिए अपने ऊपर लाजिम किया है। जब एक चीज को आदमी अपने पर खुद लाजिम कर दे फिर उसमें तंगदस्ती वगैरह को नहीं देखा जाता, उसने खुद लाजिम किया है उसको देना पड़ेगा भाई। ये माना है वला यामल फी मिसलिहल इअसारु, और इस जैसी चीजों के अंदर तंगदस्ती अमल नहीं करती। सुम अलयसार मुकद्दर बिन निसाबी फीमा रुविया अन अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह व अन मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह तआला अन्नहु कद्दरहु बिमा यफ़ज़ुलु अन नफ़क़ति नफ़सिही व इयालिही शहरा। अच्छा भाई, बात चल रही है कि करीबी महरम रिश्तेदार अगर वो तंगदस्त है और वो अपाहज वगैरह है तो फिर उसका नफका दूसरे करीबी महरम रिश्तेदार पर वाजिब होगा, लेकिन शर्त यह है कि यह करीबी महरम रिश्तेदार मालदार हो। अब मालदारी की क्या तारीफ है, मालदारी से यहां क्या मुराद है, तो उसमें याद रखो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसमें निसाब ज़कात को देखा जाएगा। किसको? निसाब ज़कात को देखा जाएगा, यानी एक आदमी के पास निसाब ज़कात के बकदर माल मौजूद है तो इसका मतलब है ये मालदार है। और निसाब ज़कात कितना है? 52.5 तोले चांदी। एक आदमी के पास 52.5 तोले चांदी के बकदर माले नामी मौजूद हो, माले नामी यानी बढ़ने वाला माल मौजूद हो, और माले नामी में क्या क्या दाखिल है? सोना, चांदी, करंसी और माले तिजारत। माले नामी में क्या क्या दाखिल है? सोना, चांदी, करंसी और माले तिजारत। एक आदमी के पास सोना, चांदी, करंसी और माले तिजारत मौजूद है, इन सारों की कीमत लगाएंगे और अगर इनकी कीमत 52.5 तोले चांदी तक पहुंच गई तो ये निसाब के बकदर माल है और इस पर साल गुजर जाए तो ज़कात वाजिब होती है। तवज्जो है, तो ये है वजूब ज़कात का निसाब भाई, वजूब ज़कात का निसाब। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां निसाब मोतबर है, जिसके पास निसाब के बकदर माल मौजूद होगा वो मालदार शुमार होगा, और जब वो मालदार है तो उस पर अपने गरीब मोहताज करीबी महरम रिश्तेदार का नफका वाजिब किया जा सकता है भाई। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां पर निसाब को नहीं देखा जाएगा बल्कि कुदरत को देखा जाएगा कि यह शख्स उसके नफके पर कादिर है या नहीं, उस शख्स उसके नफके पर कादिर है या नहीं, और उसका पता इस तरह चलेगा कि महीने के अंदर मसलन इसको तनख्वाह मिलती है, महाना आमदनी है उसकी, तो उस महाना आमदनी में से उस आदमी का अपना खर्चा और उसके बीवी बच्चों का खर्चा निकालकर अगर जायद माल बचता है तो मालूम हुआ ये मालदार है। इसका और इसके बीवी बच्चों का खर्चा निकालकर अगर कुछ माल जायद बनता है मालूम हुआ ये मालदार है, इस पर दूसरे का नफका वाजिब किया जा सकता है। और अगर ये कारीगर है, रोजाना कमाई करता है, तो फिर उस रोजाना की कमाई को देखा जाएगा कि अगर वो कमाई इसकी और बीवी बच्चों के रोजाना के खर्चे से जायद है तो इसको मालदार शुमार किया जाएगा और इस पर नफका वाजिब कर दिया जाएगा करीबी महरम रिश्तेदार का। बात समझ में आ गई? तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने निसाब ज़कात का एतबार किया, वजूब ज़कात के निसाब का एतबार किया, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कुदरत का एतबार किया कि वो शख्स दूसरे की मदद पर कादिर हो यानी उसके पास कुछ जायद माल हो भाई। तो कहते हैं सुम्मल यसारु मुकद्दरुम बिन निसाबी, यसार कहते हैं मालदारी को, कहते हैं सुम्मल यसारु मुकद्दरुम बिन निसाबी, और फिर ये जो मालदारी है इसका अंदाजा लगाया गया है निसाब के जरिए। फी मारुवियान अबी यूसुफ रहमतुल्लाह, उस रिवायत में जो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह से रिवायत की गई है, वान मुहम्मदिन रहमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह से रिवायत है कि अन्नहु कद्दरहु बिमा यफजुलु अला नफकति नफ्सिही व अय्यालिही शहरा, कि अन्नहु कद्दरहु, कि उन्होंने इस मालदारी का अंदाजा लगाया है, बिमा यफजुलु, वो जो जायद हो, अन्नफकति नफ्सिही व अय्यालिही शहरा, अपने और अपने घर वालों के नफके से बैतबार महीने के। फिर तर्जमा देख लीजिए, वान मोहम्मदिन रहमहुल्ला, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला से रिवायत है कि अन्नहु कद्दरहु, कि उन्होंने मालदारी का अंदाजा लगाया है, बिमा यफजुलु, उस चीज के साथ जो जायद हो, अला नफकति नफसिही, अपने नफके पर, व अय्यालिही, और अपने घर वालों के नफके पर, अपने अहलो अयाल के नफके पर जो जायद हो, शहरन बैतबार महीने के, यानी एक महीने के जो खर्चे में से जो जायद हो उसके पास, और बीमा यफजुलु, या उन्होंने इसका अंदाजा लगाया है वो जो जायद हो, अन जालिका, इस नफके पर, मिन कस्बिही दाइमी, वो जो इसकी दाइमी कमाई है, कुल्ल यौमिन, हर रोज, अगर वो कारीगर है तो हर रोज वो जो कमा रहा है तो उसके अपने नफके और अहलो अयाल के नफके से जायद माल है इसके पास, तो ये दूसरे को नफका देने पर कादिर है भाई। तो कहते हैं औ बिमा यफजुलु अन जालिका, या वो जो जायद हो उस अपने और बीवी बच्चों के नफके पर, मिन कस्बिही दाइमी कुल्ल यौमिन, वो जो इसकी दायमी कमाई है हर रोज, لأن المعتبر في حقوق العباد إنما هو القدرة دون النصاب، इसलिए क्योंकि वो चीज जो मोतबर है हकूक العباد के अंदर, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तो फरमाते थे कि निसाब ज़कात को देखा जाएगा, और जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, कुदरत को देखा जाएगा, इसलिए क्योंकि हकूक العباد की अदायगी में निसाब को नहीं देखा जाता बल्कि कुदरत को देखा जाता है, बल्कि कुदरत को देखा जाता है। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कर्जा लिया है तो अब यह कर्जा उसको वापस करना पड़ेगा, तो अब इसमें यह नहीं देखेंगे कि यह जो मकरूज है इसके पास निसाब के बकदर माल है या नहीं, नहीं, यह देखेंगे इसके पास थोड़ा सा भी जायद माल है जिसके जरिए कर्ज की अदायगी कर सकता है तो इसको वह अदायगी करना पड़ेगी भाई, निसाब को यहां नहीं देखेंगे। एक शख्स पर दूसरे का हक वाजिब है तो वो उसको अदा करना पड़ेगा, उसके अंदर उसकी मालदारी को नहीं देखा जाएगा बल्कि उसकी कुदरत को देखा जाएगा, जब वो कादिर है तो उसको अदा करना पड़ेगा भाई। तो ये माना है, कहते हैं लिअन्नल मुअतबरा फी हुकूकिल इबादी इन्नमा हुवल कुदरतु दूनन निसाबी, इसलिए क्योंकि वो चीज जो हुकूकुल इबाद के अंदर मुअतबर है वो कुदरत है ना कि निसाब। फइन्नहु लित्तैसीरी, क्योंकि निसाब जो होता है वो तो आसानी के लिए होता है, निसाब तो किस लिए होता है, आसानी के लिए होता है, ताकि जकात वगैरह आसानी से अदा कर दे और बाकी सारा माल उस आदमी के पास बच जाए भाई। तो कहते हैं फइन नहु लित्तैसीरी, इसलिए क्योंकि निसाब जो होता है वो आसानी के लिए होता है। वल फतवा अलल अव्वली, साहिबे हिदाया फरमाते हैं कि फतवा पहले कौल पर है, यानी इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के कौल पर, कि मालदारी में किसको देखेंगे, निसाब को देखेंगे, लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह तो वुजूबे ज़कात के निसाब के साथ अंदाजा लगाते हैं, लेकिन फतवा इस पर है कि मुअतबर तो निसाब ही है लेकिन वुजूबे ज़कात का निसाब नहीं, हिरमाने ज़कात का निसाब, वुजूबे ज़कात का निसाब नहीं बल्कि हिरमाने ज़कात का निसाब। याद रखो भाई, यहां दो किस्म के निसाब हैं, एक निसाब है वुजूबे ज़कात का और एक निसाब है हिरमान जकात का। वजूब जकात यानी जिस आदमी के पास इतना माल हो, इतना निसाब के बकदर, और उस पर साल गुजर जाए तो उस पर जकात वाजिब होती है, और हिरमान जकात का निसाब यानी एक आदमी के पास इस निसाब के बकदर माल हो तो उसको जकात नहीं दी जा सकती, वो जकात का मुस्तहिक नहीं है। तो एक निसाब किस चीज का है? वजूब जकात का, और एक निसाब है हिरमान जकात का। तो याद रखो, निसाब तो दोनों का 52.5 तोले चांदी के बकदर है, वजूब जकात का निसाब भी 52.5 तोले चांदी और हिरमान जकात का निसाब भी 52.5 तोले चांदी। लेकिन फर्क यह है कि वजूब जकात आएगा सिर्फ माले नामी में। वजूब जकात किस में आएगा? माले नामी, यानी ऐसा माल जो बढ़ने वाला है, जिसमें बढ़ने की सलाहियत है। और वो चार चीजें हैं मैंने बतलाया, सोना, चांदी, करंसी और माले तिजारत। एक आदमी के पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ी से रुपए हैं और कुछ सामान तिजारत है, लेकिन इन सारों को जमा करें, इनकी कीमत लगाएं, तो वो 52.5 तोले चांदी के बराबर बनती है। तो इस माल पर जब साल गुजरेगा तो इस आदमी पर जकात वाजिब हो जाएगी। लेकिन अगर 52.5 तोले चांदी से कम हुई इस माले नामी की कीमत, तो फिर उस शख्स पर जकात वाजिब नहीं। तो देखो, इसके अंदर सिर्फ माले नामी को देखा है, यानी सोना, चांदी, करेंसी और माले तिजारत, इस आदमी की और माल को नहीं देखना
जी।
जबकि हिरमान जकात के निसाब में हाजत असलिया से जो जायद चीजें हैं उनको भी मिलाया जाता है
जी।
आप किसको जकात दे सकते हैं और किसको नहीं, तो याद रखो मुस्तहिक जकात वो शख्स है कि उसके पास अपनी जरूरत असलिया से जायद 52.5 तोले चांदी के बकदर माल ना हो। 52.5 तोले चांदी के बकदर माल ना हो। मसलन एक आदमी है, उसके पास कुछ माल तो मौजूद है लेकिन वो 52.5 तोले चांदी से कम है, तो ये आदमी जकात का मुस्तहिक है, इसको जकात दी जा सकती है भाई। लेकिन यहां पर सिर्फ माले नामी को नहीं देखना, जो जरूरत और हाजत से जायद सामान है उसको भी साथ मिलाएंगे। अब मसलन इस आदमी के पास माले नामी जो है, यानी सोना, चांदी, करंसी और माले तिजारत, इनकी जब कीमत लगाई जाए तो वो 52.5 तोले चांदी से कम है, लेकिन कुछ जायद चीजें इस आदमी के पास मौजूद हैं जो इसकी जरूरत से जायद हैं। मसलन कुछ जायद बर्तन इसने घर में रखे हुए हैं, तो आप इन बर्तनों की कीमत भी साथ लगाएंगे। कुछ और चीजें इसके पास जायद पड़ी हैं जरूरत से, उनकी भी कीमत लगाएंगे। और अगर इन सारों की कीमत मिलाकर 52.5 तोले चांदी के बराबर बन गई, तो मालूम हुआ यह आदमी मुस्तहिक जकात नहीं, यह हिरमान जकात का निसाब है
जी।
तो हिरमान जकात के निसाब में सिर्फ माले नामी को नहीं देखेंगे बल्कि जरूरत असलिया से जायद माल को भी देखेंगे। अब हाजत असलिया से जायद माल किसे कहेंगे? तो याद रखना कि वो सामान जो सारा साल किसी भी तरह इंसान के काम में न आए, ये सब हाजत असलिया से जायद है, इसको भी साथ मिलाएंगे। मसलन एक आदमी है भाई, उसके पास घर में कुछ उसने बर्तन कीमती रखे हुए हैं और सारा साल उन बर्तनों की जरूरत ही पेश नहीं आती, तो मालूम हुआ ये उसकी जरूरत असलिया से जायद हैं, तो इनकी भी कीमत साथ मिलाई जाएगी। और इसी तरह अगर कुछ चीजें मसलन इंसान ने आसाइश के लिए रखी हुई हैं, उसकी हाजत असलिया से जायद हैं, मसलन हाजत तो एक साइकिल की है, इसने दो साइकिलें रखी हुई हैं, तो दूसरी साइकिल भी क्या हुई, हाजत असलिया से जायद हुई, तो इन जायद चीजों की या इस आसाइश के लिए रखी हुई चीजों की भी कीमत लगाई जाएगी। तो मालूम हुआ हिरमान सदका के अंदर जरूरत असलिया और हाजत असलिया से जायद जो चीजें हैं उनकी कीमत भी मिलाई जाएगी। मसलन एक ऐसी चीज है जो साल भर इसके इस्तेमाल में ही नहीं आती, इसने वैसे ही रखी हुई है, या मसलन जरूरत से जायद कोई चीज रखी हुई है, या आसाइश और सहूलत के लिए कुछ चीजें जो हैं रखी हुई हैं, तो वो उन चीजों की भी कीमत मिलाई जाएगी हिरमान जकात के निसाब में। बात समझ में आ गई? तो हिरमान जकात में चाहे माले नामी हो चाहे गैर नामी, सारों की कीमत लगाई जाएगी, और वो अगर 52.5 तोले चांदी तक पहुंच जाए तो ये हिरमान जकात का निसाब पूरा हो गया, ये शख्स जकात का मुस्तहिक नहीं है। जबकि वजूब जकात का निसाब क्या है कि माले नामी को सिर्फ देखेंगे, और वो चार चीजें हैं, उनको देखेंगे यानी सोना चांदी करंसी और माले तिजारत, सिर्फ इनको देखेंगे और ये 52.5 तोले चांदी के बकदर हों और इन पर साल गुजर जाए तो फिर जकात वाजिब होगी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल फतवा अलल अव्वली, और फतवा जो है पहले कौल पर है, यानी मालदारी में निसाब को देखा जाएगा। लाकिन न निसाब, निसाब हिरमान सदकाती, लेकिन ये निसाब जो है हिरमान सदका का निसाब है। सदका यानी जकात भाई, अरबी में जकात को भी क्या कहते हैं, सदका कहते हैं भाई। फिर एक सदका वाजिबा है, एक गैर वाजिबा। सदका वाजिबा जैसे जकात वगैरह, और सदका गैर वाजिबा कोई शख्स अपनी मर्जी से फुकारा को कोई माल वगैरह देता है, ये सदका गैर वाजिबा है भाई। तो कहते हैं लाकिन न निसाब, निसाब हिरमान सदकती, लेकिन वो निसाब जो मोतबर है वो हिरमान सदका का निसाब है। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।